नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मीका नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और राज्य। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और अपने प्रिय मित्रों और परिवार के साथ आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा हम बहुत सारी आत्मिक बातों को सीख रहे हैं। तो आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन दूर में भी रहकर एक साथ रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आज जब हम आपके वचन को मीका नबी की पुस्तक से सीखते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब आपका वचन उनके कानों तक पहुंचे तो वे आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय निराश हैं, परेशान हैं, बीमार अवस्था में हैं, अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। पिताजी, आप उन सब से बोले और बातचीत करें, ताकि वे जान पाएं कि उनका जीवन बहुमूल्य है। आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनके हर एक जरूरतों को समझते हैं। आपके निकटता में सबका समाधान है। आज के वचन के द्वारा आप उनकी सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मीका कहता है कि यहोवा पृथ्वी पर उतरकर पृथ्वी पर चलेगा, पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे और तराई फट जाएगी, उनके पाप के कारण परमेश्वर उन्हें मिट्टी में मिला देगा। आज उनके खंडहर इस भविष्यवाणी के मुख्य गवाह हैं। आज वहां खुदाई में एक भी मूरत नहीं मिलती है। अश्शूरों ने उत्तर दिशा से आकर उनके युवाओं को बंदी बनाया और दासत्व में उन्हें ले गए और फिर इसराइल को ध्वंस कर दिया। उनके भवनों को और महल के स्तंभ को और तरासे हुए पत्थर सब घाटी में लुढ़का दिए गए। उनके पाप के कारण परमेश्वर उन्हें दंड देने पर बाध्य हुआ था। मेरे प्रियो, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए मीका नबी की पुस्तक एक अध्याय उसके 11 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे शापीर की रहने वाली नंगी होकर निर्लज चली जा, सानान की रहने वाली नहीं निकल सकती, बेतेसेल के रोने पीटने के कारण उसका शरण स्थान तुमसे ले लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है शापीर, शापीर अर्थात सुंदर नगर, न तो वे लोग रहे और न ही वह नगर, अतः हम उसकी भौगोलिक स्थिति नहीं जानते हैं। वह नगर सुंदर नहीं रहेगा, नंगी होकर निर्लज चली जा। सानान की रहने वाली नहीं निकल सकती, सानान का अर्थ है परेड का नगर, वे बाहर जाने के योग्य नहीं रहे, इसका भी भौगोलिक स्थान अज्ञात है। मीका की पुस्तक एक अध्याय के 12 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि सारोत की रहने वाली तो कुशल की बाट जोहते जोहते तड़प गई है, क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है सारोत की रहने वाली तो कुशल की बाट जोहते जोहते तड़प गई है। सारोत का अर्थ है कड़वाहट, उन्होंने शुभ संदेश की बाट जोही परंतु उन्हें बुरा समाचार मिला, यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है। अश्शूर यरूशलेम तक पहुंच गए हैं और डेरा डाले हुए हैं। मीका नबी की पुस्तक एक अध्याय के 13 पद में हम आगे पढ़ते हैं, हे लाकीश की रहने वाली अपने रथों में वेग चलने वाले घोड़े जोत, तुझी से सियोन की प्रजा के पाप का आरंभ हुआ, क्योंकि इसराइल के अपराध तुझी में पाए गए। लाकीश का अर्थ है घोड़ों का नगर, वहां अनेक घुड़साल थी। वह नगर यरूशलेम के दक्षिणी पश्चिमी में था जो पलिस्त के निकट था। मेरे मित्रों यहां यहूदा में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा आरंभ हुई थी। लाकीश यहूदा और इसराइल के मध्य मूर्ति पूजा को जोड़ने वाली कड़ी थी, इसलिए यहां पर हम पढ़ते हैं, लिखा है अपने रथों में वेग से दौड़ने वाले घोड़े जोत। यहां घोड़े सूर्य की पूजा के लिए रखे जाते थे। यूनानी देवता अपोलो की भी रथ होती थी, अपोलो भी रथ पर सवार रहता था। यह सूर्य की पूजा से संबंधित था। परमेश्वर लाकीश को दोषी ठहराता है क्योंकि वहीं से यहूदा में मूर्ति पूजा आई थी। मीका एक उसके 14 पद में आगे लिखा है, इस कारण तू गत के मोरेशेत को दान देकर दूर कर देगा, अकजीब के घर से इसराइल के राजा धोखा ही खाएंगे। लिखा है गत मोरेशेत, यह मीका का जन्म स्थान था और यहूदा राज्य में था। तब आगे कहता है अकजीब के घर से इसराइल के राजा धोखा ही खाएंगे। अकजीब का अर्थ है झूठ का नगर, अकजीब अपने नाम के अनुसार झूठ का नगर ही था, उसके निवासी सब झूठे थे। अकजीब एक शीतकालीन नाले का भी नाम था। इसराइल के नाले केवल शीत ऋतु में ही जलमग्न होते थे और अन्य ऋतुओं में वहां पानी नाम ही नहीं होता था। कहने का अर्थ है कि पानी वहां पर नहीं पाया जाता था, अतः अकजीब को झूठ या शीतकालीन नाला कहा जाता था। एक और कारण था कि अकजीब को झूठा नगर कहा जाता था, उन्होंने उत्तरी राज्य की सहायता करने का वचन दिया था परंतु उन्होंने उनकी कभी भी सहायता नहीं की थी। अकजीब के घर से इसराइल के राजा धोखा खाएंगे, यही कारण था कि वे धोखा खाए। मीका एक अध्याय के 15 पद में लिखा है, हे मारेशा की रहने वाली मैं फिर तुझ पर एक अधिकारी ठहराऊंगा और इसराइल के प्रतिष्ठित लोगों को अदुल्लाम में आना पड़ेगा। यहां इसराइल की सहायता का संकेत है, परंतु इस समय नहीं। यह अधिकारी दाऊद का वंशज माना जाता है, जो प्रभु यीशु की अपेक्षा और कोई नहीं हो सकता है। वही सच्चा और विश्वास योग्य है, वही उनका उद्धार करेगा। परंतु निश्चय ही वह झूठ के नगर से नहीं आएगा। मीका के समय इसराइल के साथ धोखा हुआ था, और जब अश्शूरों ने आक्रमण किया तब उन्हें कहीं से सहायता नहीं मिली। अब मीका संपूर्ण इसराइल राष्ट्र को विलाप करने का आह्वान देता है। मीका की पुस्तक 1 अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने दुलारे लड़कों के लिए अपना केश कटवा कर सिर मुड़ा, वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बंदी होकर तेरे पास से चले गए हैं। मेरे मित्रों, अश्शूरों ने पहली बार आक्रमण करके इसराइल के सब युवकों को बंदी बना लिया था। अतः इसराइल को विलाप करने के लिए कहा गया है। सिर मुड़ाना विलाप करने का द्योतक है। मूसा की व्यवस्था में सिर मुड़ाना और दाढ़ी कटाना मना था, परंतु उनके पाप के कारण उन्हें ऐसा करना आवश्यक था। मीका के समकालीन यशाया को इस विषय में टिप्पणी करना पड़ा था, जिसे हम देखते हैं यशाया नबी की पुस्तक 15 अध्याय के 2 पद में, बैत और दीबोन ऊंचे स्थानों पर रोने के लिए चढ़ गए हैं, नबो और मेदबा के लिए मुआब हाय हाय करता है, उन सबों के सिर मुड़े हुए और सबों की दाढ़ियां मुड़ी हुई हैं। इस पद से विलाप और दुख की अधिकता प्रकट होती है। उनकी संतान बंदी बना ली गई है और वे ले जाई जा चुकी थी। यह उन्हें परमेश्वर का दंड था। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 1 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 2 से बनाए रखेंगे, और इस अध्याय में हम कुछ विशेष बातों को देखेंगे। इस अध्याय का अर्थात दूसरे अध्याय का विषय इस प्रकार है, मीका के दूसरे संदेश में उनके विशेष पापों को उजागर किया है। हम देखते हैं मीका का दूसरा संदेश। मेरे मित्रों, इस अध्याय में मीका उनके पापों को स्पष्ट करता है। उन्हें मूर्ति पूजा के साथ अनाचार का दंड मिला था। उनकी मूर्ति पूजा में अनैतिकता की चरम सीमा थी, और वेश्याएं धन संचय कर रही थी। वेश्यावृत्ति उनके धर्म के लिए धनोपार्जन का साधन था। मेरे विचार में आज के अभिचारिक धर्मों और उस युग की मूर्ति पूजा में अंतर नहीं है। दोनों ही में यौनाचार की मुख्य भूमिका है। यह मनुष्य द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं के उल्लंघन का सिद्ध प्रमाण है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार नष्ट होते हैं, और स्त्री पुरुष का वैवाहिक पवित्र संबंध भी टूटता है, जिसे आज हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते और देखते और सुनते हैं। यौनाचार का सबसे मधुर अनुभव केवल विवाह की सीमाओं में ही है। यह मूल्यवान है, इसे परमेश्वर ने बनाया है। यदि यौनाचार को कोई नई नैतिकता या धर्म के नाम पर उभारा तो वह विनाश का मार्ग तैयार करता है। मेरे प्रियो, इस अध्याय में मीका मनुष्य के प्रति पाप का उल्लेख करेगा। पहले अध्याय में परमेश्वर के विरुद्ध पाप की चर्चा की गई थी। आप देखते हैं कि मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ उचित ना हो तो मनुष्य के साथ भी उसका संबंध उचित अर्थात सही नहीं होगा। और जब मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ ठीक होगा तो एक दूसरे के साथ भी उसके संबंध ठीक होंगे। कुछ वर्ष पूर्व फ्लावर चिल्ड्रन नाम से एक अभियान आरंभ हुआ था जिसमें परमेश्वर का स्थान न होने के कारण घोर अनैतिकता आ गई और अनेक युवाओं का जीवन नष्ट हुआ। मेरे मित्रों, यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ उचित नहीं है तो अपने साथियों के साथ भी आपका संबंध उचित नहीं हो सकता है। जी हां, अध्याय 2 को आप धर्मशास्त्र का एक मधुर अध्याय नहीं पाएंगे क्योंकि आप इसमें इसराइल के विनाशक पापों का उल्लेख पाएंगे जो इसके विनाश का कारण बना। आपके जीवन के विनाश का कारण और कोई नहीं परंतु आपका स्वयं का पाप होता है। हम परमेश्वर के लोगों के लिए मीका के संदेश को सुनना लाभदायक होगा कि हम जाग उठें, हम सचेत हो जाएं कि हम पाप से भागें। मीका के पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। ध्यान दीजिए, यद्यपि यहां अवैध यौनाचार का उल्लेख किया गया है, अन्य दुराचारों का भी इसके अर्थात इसमें मुख्य विवरण दिए गए हैं। वे रात में बिस्तरों में पड़े हुए बुरे विचार करते हैं और संभवतः रात ही में उन्हें पूरा भी करते हैं। मुझे एक महिला ने बताया कि उसका पति अपना कार्य घर में लाकर और रात में अगले दिन के कुकर्म की योजना बनाता है जिसके कारण वह उसे तलाक देना चाहती है। यहां पर लिखा है, बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। वे दुष्टता को पूरा करने में संपन्न थे। आज भी पापी और अभक्तों के पास सब साधन है, उनके पास दबंग है और वे उन कार्यों को कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी भला मनुष्य धन संपन्न हो ही नहीं सकता, परंतु आज हम देखते हैं कि पैसा ही आज शक्ति है और अभक्तों का अनुचित काम करने में सफल होता है। आज किसी भी देश के संकट का कारण राजनीतिक दल नहीं है, मुख्य कारण है कि अभक्त मनुष्य सफल हो रहे हैं। इसराइल के पतन का कारण भी यही था। मेरे मित्रों, हमने देखा है कि मीका परमेश्वर की राजनीति प्रकट करता है। यदि आपको विश्वास ना हो तो सब बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन का इतिहास आप पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। जब अभक्तों के हाथ में धन और अधिकार आ जाता है तब परमेश्वर दंड देता है। मीका उन लोगों की चर्चा करता है जो 24 घंटे दुष्टता में लीन रहते थे। अब वह स्पष्ट विवरण हमें देता है। मीका की पुस्तक 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। आपने सुना, लिखा है कि वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं। इसका उदाहरण हम आहाब और इजेबेल की लालच में भी देख चुके हैं। आहाब नाबोत के खेत का लालच करके बेचैन था। उसकी पत्नी इजेबेल ने नाबोत को मरवा दिया और इस प्रकार आहाब ने उसका खेत अनाधिकृत ले लिया। यथा राजा तथा प्रजा, उसकी देखा देखी प्रजा भी ऐसा ही करने लगी। जिनके पास पैसा और अधिकार था उन्होंने गरीबों के खेत छीन लिए। मेरे मित्रों, आज भी लालच को देश का लाभ कहकर निभाया जाता है। बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा ही खा जाती है। इसराइल का भी यही पाप था, आज का भी यही पाप है कि मनुष्य एक दूसरे को खाने में लगा हुआ है। मनुष्य अधिकाधिक धनवान होना चाहता है, क्यों मैं नहीं जानता। आप 1,00,000 रुपए में जितना पाप करेंगे उतना ही 10,00,000 रुपयों में करेंगे। 10,00,000 रुपयों की लालच करके आप ना तो अधिक दारू पी सकते हैं और ना ही अधिक पाप कर सकते हैं। धनवान अधिक धनी होता है और गरीब अधिक गरीब होता है। मीका ऐसी ही दशा में भविष्यवाणी कर रहा है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने इसराइल को प्रतिज्ञा के देश का बंटवारा करके दिया था। उसने प्रत्येक गोत्र को अपना अपना भूभाग दिया था। प्रत्येक गोत्र में भी प्रत्येक परिवार को परमेश्वर ने निज भूभाग दिया था, वह उसकी संपदा थी। परमेश्वर ने नियम भी बनाए थे कि कोई अपनी संपदा से वंचित न हो। जुबली वर्ष में गिरवी रखी भूमि उसके स्वामी को लौटा दी जाती थी, परंतु धनवानों ने गरीबों को लूटने की युक्ति निकाल ली थी। संपूर्ण धर्मशास्त्र में हम देखते हैं कि परमेश्वर गरीबों का पक्ष लेता है। प्रभु यीशु स्वयं इस पृथ्वी पर गरीब था। हम मीका नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इस कारण यहोवा यूं कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा न सकोगे, न अपने सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। मेरे मित्रों, यह अति रोचक पद है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें दोषी ठहराता हूं क्योंकि तुम बिस्तरों पर लेटे लेटे बुरी युक्तियां बनाते हो। अब वह कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं। क्या परमेश्वर बुराई करेगा? जी नहीं, परमेश्वर तो दुष्टों को दंड देगा, परंतु दुष्टों के विचार में वह बुराई है क्योंकि वह उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जी हां, आज भी कुछ लोग बुराई का दोष परमेश्वर को देते हैं, अतः परमेश्वर उन्हीं की भाषा काम में लेता है कि वह उन पर विपत्ति डालेगा। यदि वे पाप करते रहें तो परमेश्वर उन्हें दंड देकर रोकेगा। परमेश्वर कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा ना सकोगे। परमेश्वर ने उनकी गर्दनों में दासत्व की जंजीर डाली। वे बंदी बनाकर अश्शूर देश ले जाए गए थे। अश्शूर देश संसार का सबसे अधिक निर्दयी एवं पाशविक देश रहा है। परमेश्वर यह भी कहता है, न ही अपने सिर ऊंचे करके चल सकोगे क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। वे घमंडी और हठीले थे। मैं फिर कहता हूं कि यह सरकार नहीं, शासन करने वालों के चरित्र के कारण कोई देश महान होता है, कोई देश आगे बढ़ता है। मेरे मित्रों, आज हम सबके जीवन में भी परमेश्वर अपने समय के अनुसार दंड देगा। यदि हम अपने मनों को नहीं फिराते हैं, अपने बुरी चालों से नहीं फिरते हैं। कई बार हमारे युवा पीढ़ी ये सोचते हैं कि उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उनके सगे संबंधी, उनके मित्र उनके जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। वे 2 प्रकार का जीवन जीते हैं, एक घर का जीवन, एक बाहर का जीवन। परंतु परमेश्वर आपके दोनों जीवन को जानता है, आपके एक एक मूवमेंट को जानता है और वह आपको मौका देता है कि आप अपने पापों से पश्चाताप करके फिर जाएं। अन्यथा वह आपके कारण वो इस प्रकार के वचन कहेगा कि मैं इस स्कूल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं। जी हाँ, इससे पहले कि ये सारी विपत्तियां हमारे ऊपर हमारे कुल पर आए, हम परमेश्वर के निकटता में आए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, उससे क्षमा मांगे। क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं कि मीका नबी के पुस्तक में परमेश्वर ने इसराइल को अश्शूरों के वश में कर दिया है। अश्शूर एक क्रूर राज्य है, वहां के लोग क्रूर हैं, बहुत निर्दयी हैं, और उनकी अधीनता में देना इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आप अपने सर को उठा करके कभी भी नहीं चल सकते। ऐसी दशा उनके जीवन में आई सिर्फ इस कारण से कि वे घमंडी और हठीले थे। वे परमेश्वर की बातों को नहीं सुनकर, नहीं मानकर अपने ही अनुसार चलते रहे, और ये सब कुछ हुआ और तब परमेश्वर को उनके ऊपर दंड लाना पड़ा। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम इस अध्ययन में मीका नबी की पुस्तक से देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने समय के अंतराल में अपने कार्यों को करता है। वह आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी आशीषों को देना चाहता है, परंतु हम उन आशीषों को पाप के द्वारा रोकते हैं। यदि हम उसे हटाएं तो निश्चय ही परमेश्वर की आशीषें हम पर बरसने लगेगी। क्या आप नहीं चाहते कि आप उन आशीषों को पाएं? यदि हाँ, तो आज ही एक अच्छा निर्णय अपने जीवन के लिए लें और अपने बुराइयों से मन को फिराएं और प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करें। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय भी समाप्त होता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे, ताकि अगले अध्ययन में हम फिर से परमेश्वर के वचन को सीखने पाएं। प्रभु आप सबके साथ हो।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
आराधना हम ईश्वर।